देर रात हवेली। रात हवेली पर जैसे किसी भारी चादर की तरह उतर आई थी। आसमान में तारे थे, पर उनकी चमक भी उस सन्नाटे को पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी। आंगन में लगे पुराने पीले बल्ब की रोशनी पेड़ों की टहनियों से टकराकर जमीन पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बना रही थी, ऐसी परछाइयां जो चलते वक्त भी स्थिर लगती थीं। हवा में ठंडक थी और कहीं दूर से रात के कीड़ों की धीमी सी आवाज आ रही थी। हवेली के भीतर सब कुछ सोया हुआ था। इतना शांत कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी किसी चेतावनी की तरह कानों में चुभ रही थी। मुख्य दरवाज़ा बहुत धीरे से खुला, जैसे कोई शोर से डर रहा हो। जूतों की हल्की सी आहट पत्थर के फर्श पर पड़ी और फिर थम गई। विश्वनाथ अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, वो थकान जो सिर्फ शरीर की नहीं होती बल्कि दिमाग और जिम्मेदारियों की भी होती है। दिन भर की मीटिंग्स, अधूरे फैसले, लोगों की उम्मीदें और शिकायतें सब जैसे उसके कंधों पर लदे हुए थे। उसने कोट उतारकर पास रखे स्टैंड पर टांग दिया, टाई ढीली की, एक पल के लिए आंखें बंद की। फिर उसके कदम अपने आप सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसने ध्यान रखा कि कोई आवाज ना हो, जैसे घर की नींद को तोड़ना उसे गुनाह लग रहा हो। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। अंदर हल्की सी पीली लाइट चल रही थी, न बहुत तेज न बहुत मंद, बस इतनी कि कमरे की चीजें साफ दिख सकें। बिस्तर पर श्यामली सो रही थी, एक करवट लिए हुए। एक हाथ तकिए के नीचे दबा हुआ, दूसरा ढीला सा बिस्तर पर फैला। साड़ी का पल्लू कंधे से थोड़ा फिसलकर उसकी बाँह पर आ गया था। चेहरे पर नींद की नर्म परत थी, बेफिक्र मासूम। विश्वनाथ ने अनजाने में अपने कदम और धीमे कर लिए। उसने महसूस किया कि उसका दिल कुछ ज्यादा ही जोर से धड़क रहा है। जैसे ही उसके जूतों की आवाज़ जरा सी साफ हुई, श्यामली की पलकों में हलचल हुई। उसने आंखें खोली। एक पल के लिए वो नींद और हकीकत के बीच झूलती रही, फिर उसकी नज़र सामने खड़े विश्वनाथ पर पड़ी। अरे, आप आ गए? उसकी आवाज़ में नींद भी थी और एक सुकून भी। वो तुरंत उठकर बैठ गई, जैसे देर से जागने का कोई अपराध बोध हो। माफ करना, इंतजार करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। विश्वनाथ ने शर्ट के ऊपर के बटन खोलते हुए बस इतना कहा, कोई बात नहीं। उसके लहजे में न शिकवा था न सवाल, बस थकान और एक ठहराव। श्यामली बिस्तर से उतर आई। उसने एक पल भी नहीं सोचा, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ, और बिना किसी जवाब का इंतजार किए रसोई की तरफ बढ़ गई। विश्वनाथ कमरे में अकेला रह गया। उसने गहरी सांस ली, ऐसी सांस जैसे दिन भर का बोझ फेफड़ों से बाहर निकालना चाहता हो। वो बाथरूम में गया, नल खोला, ठंडा पानी चेहरे पर पड़ा एक झटके की तरह। आईने में उसने खुद को देखा, थकी हुई आंखें, माथे पर हल्की सी सिकुड़न। शर्ट बदलकर उसने हल्की रंग की साधारण शर्ट और पजामा पहन लिया, साधारण कपड़े। पर उस साधारणपन में भी एक अजीब सा रूखापन था, और कहीं न कहीं एक छुपी हुई नरमी भी। जब वो बाहर आया तो रसोई से रोटियों की खुशबू आने लगी थी, तवे पर सिकती रोटियों की सूंधी महक, तेज आंच की गर्मी। श्यामली चुपचाप काम कर रही थी, आस्तीन जरा सी चढ़ी हुई, कलाई पर कांच की चूड़ियां धीमी सी आवाज कर रही थी। वो रोटी पलटती, सब्जी गर्म करती और बीच बीच में दीवार खड़ी की तरफ देख लेती। कुछ ही मिनटों में उसने ट्रे सजाई, दो प्लेटें, दोनों में बराबर खाना, सब कुछ सलीके से रखा हुआ। वो ट्रे लेकर कमरे में आई। विश्वनाथ की नज़र वहीं ठहर गई। तुमने खाना नहीं खाया? उसकी आवाज़ में हैरानी थी। श्यामली ने ट्रे नीचे रखी। नहीं, हल्की सी मुस्कान के साथ बोली। आज माँ से बात हो रही थी, उन्होंने कहा पति के साथ ही खाना चाहिए। विश्वनाथ ने कुर्सी खींची, बैठते हुए बोला, ये साथ ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है श्यामली, मेरे आने का कोई तय टाइम नहीं होता, तुम जैसे अब तक करती आई हो वही ठीक है। श्यामली ने सिर हिलाया, जी ठीक है। उसका लहजा शांत था, पर आंखों में कुछ और ही चल रहा था। विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा। तुम हर बात में हाँ क्यों बोल देती हो? श्यामली एक पल को ठिठकी। क्या क्या मतलब? आवाज़ में हल्की सी घबराहट आ गई। आप चाहते हैं कि मैं इंतज़ार करूँ हर रात? विश्वनाथ ने तुरंत कहा, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। वो थोड़ा रुका फिर बोला, मेरा मतलब तुम्हारा अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो है या नहीं? श्यामली की उंगलियां आपस में उलझ गईं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसने धीरे से कहा, जब होगा तो मैं जरूर कहूंगी। खाने के दौरान कमरे में फिर से चुप्पी फैल गई, बस चम्मच की हल्की आवाज और बाहर से आती हवा की सरसराहट। नजरें कभी प्लेट पर जातीं, कभी अनजाने में एक दूसरे पर। एक पल श्यामली के हाथ से चावल के कुछ दाने उसकी उंगलियों पर चिपक गए, वो उन्हें अनदेखा करने लगी। विश्वनाथ की नज़र वहीं अटक गई। उसने बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां श्यामली की उंगलियों से टकराईं, हल्की सी, पर जैसे किसी तार में करंट दौड़ गया हो। वो धीरे धीरे उसके हाथ से चावल हटाने लगा, एक एक दाना,
बिना जल्दबाजी। श्यामली की सांसें अचानक गहरी हो गईं। वो कुछ कहना चाहती थी पर आवाज गले में ही अटक गई। विश्वनाथ ने भी कुछ नहीं कहा, बस उसकी उंगलियों की गर्मी और उनका छूना कुछ ज्यादा देर तक। नजरें मिली फिर तुरंत हट गईं। श्यामली ने प्लेट उठाई। मैं रसोई में रखाती हूँ। वो जल्दी जल्दी बाहर चली गई। रसोई में पहुंचते ही उसके हाथ हल्के से कांपने लगे। कुछ देर पहले की याद, तेज आंच, गिरता पानी और वो अचानक पैदा हुआ डर। दिल की धड़कन तेज हो गई, सीने में एक अजीब सा खिंचाव। ना पूरा डर, ना पूरा कुछ और, बस एक उलझन। वो कुछ सेकंड वहीं खड़ी रही, सांसें संभालती हुई, खुद से कहती, कुछ नहीं है, सब ठीक है। लेकिन भीतर कुछ था जो अब भी समझ में नहीं आ रहा था, और उसी अधूरी समझ के साथ रात और गहरी हो गई। रसोई की खिड़की से बाहर अंधेरा और सघन लग रहा था। श्यामली ने बाहर देखा, जैसे रात भी उसके मन की तरह किसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हो। पीछे कमरे में बैठा विश्वनाथ भी चुप था, पर उसकी चुप्पी में अब कुछ बदल चुका था।